समरी इन हिंदी। अंक एक। जैसे ही नाटक प्रारंभ होता है, माधव गांव के डॉक्टर से बात करता दिखाई देता है। वह अपने मस्तिष्क की विचित्र दशा के बारे में बता रहा है। वह बताता है कि अमल के आने के पूर्व सब कुछ सामान्य था। वह अपने घर में स्वतंत्र महसूस करता था, लेकिन अमल के आने के पश्चात वह नहीं जानता कि ऐसी भावना कहाँ से आई। उसका हृदय सदैव उसके अमल के विचारों से भरा रहता है। यदि अमल चला जाएगा तो उसका घर उसका नहीं रहेगा। उसकी अनुपस्थिति में वह बड़ा बेचैन महसूस करेगा। डॉक्टर बताता है कि यदि भाग्य उसे जीवन देना चाहेगा तो उसे अमल को कुछ नहीं होगा। ग्रंथों के हिसाब से पित्त या अंगघात, सर्दी या गठिया सभी एक से पैदा होते हैं, लेकिन माधव को गुस्सा आ जाता है। डॉक्टर बताता है कि रोगी को अत्यधिक देखभाल की आवश्यकता है। माधव पूछता है कि वह ऐसा कैसे करे। डॉक्टर चेतावनी देता है कि अमल को किसी भी दशा में घर से बाहर नहीं जाने देना चाहिए, लेकिन माधव उत्तर देता है कि उसे घर के अंदर रखना अत्यंत दुष्कर कार्य है। पतझड़ का सूरज तथा नमी दोनों ही अमल के स्वास्थ्य के अनुकूल नहीं है। महान विद्वान च्यवन कहता है कि सबसे कम जायकेदार दवा सबसे अधिक असरकारक होती है। यह कहकर डॉक्टर चला जाता है। अब फकीर जाफर आता है। उसके आने पर माधव फिर से क्रोधित होता है। माधव जाफर को बताता है कि वह एक बच्चे को घर में लाया है और उसके बारे में चिंतित है। उसने ऐसा इसलिए किया कि उसकी पत्नी एक बच्चे को गोद लेने को लालायित थी। जाफर जवाब देता है कि यह कोई नई कहानी नहीं है और वह बच्चे को गोद लेने के विचार को पसंद नहीं करेगा। पूर्व में माधव एक ऐसे बच्चे के लिए जो उसका नहीं था, अपने श्रमपूर्ण कमाए धन को खर्च करने का विचार पसंद नहीं करता था, लेकिन अब बच्चा उसके हृदय के इतने करीब आ गया है कि अब वह धन की चिंता नहीं करता है। अब तो उसे लगता है कि उसका सारा धन इस बच्चे के लिए ही है। जब जाफर उसे बच्चे के बारे में पूछता है तो वो बताता है कि अमल एक ऐसे व्यक्ति का बेटा है जो गांव के रिश्ते में उसकी पत्नी का भाई लगता है। बच्चे ने अपने शैशव काल में ही अपनी माँ खो दी और अभी हाल में ही उसने अपना पिता भी खो दिया है। जाफर कहता है कि ऐसी दशा में तो बच्चे को उसकी और अधिक आवश्यकता है। माधव ये भी बताता है कि डॉक्टर का कहना है कि बच्चे के बचने की आशा क्षीण है। बच्चे को बचाने का केवल एक ही तरीका है कि उसे पतझड़ की हवा तथा सूरज की धूप से दूर रखा जाए। जाफर बताता है कि उसे बच्चों को घर के अंदर रखना आता है। यह कहते हुए वह वापस आएगा और अमल को घर के अंदर ही रखेगा। जाफर अपने काम में चला जाता है। अब अमल आता है। वह माधव अपने अंकल से बाहर जाने के लिए पूछता है। वह बताता है कि उसकी आंटी चक्की में मूंग दल रही है। गिलहरी अपनी पूंछ ऊंचे किए बैठी है और मूंग के दाने को तोड़ने का प्रयास कर रही है। अमल माधव से बाहर जाकर आनंद उठाने की आज्ञा मांगता है, लेकिन माधव मना कर देता है। अमल कहता है कि काश वह एक गिलहरी होता। जब अमल पूछता है कि उसे बाहर क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है, तो माधव बताता है कि डॉक्टर ने उसे बाहर जाने से मना किया है। माधव अमल को यह भी बताता है कि विद्वान व बुद्धिमान लोग घर के बाहर नहीं जाते, अतः उसे घर में ही बैठना चाहिए तथा विद्वान बनने के लिए पुस्तकें पढ़नी चाहिए। लेकिन अमल कहता है कि वह विद्वान नहीं बनना चाहता, बल्कि वह बाहर जाकर सब जगह वस्तुओं को देखना चाहता है। इस पर माधव उसे डांटता है। वह बाहर जाकर क्या देखेगा? अमल उत्तर देता है कि वह अपनी खिड़की में बैठकर दूर स्थित पहाड़ी को देखेगा। वह बताता है कि कल उसने एक व्यक्ति को पहाड़ी पर कंधे पर बांस ले जाते देखा, जिसके ऊपरी सिरे पर एक छोटी पोटली तथा बाएं हाथ में पीतल का एक बर्तन था। वह एक जोड़ी पुराने जूते पहने था। वह सीधे घास के मैदान में होकर जा रहा था। अमल बताता है कि उसने उस व्यक्ति से पूछा कि वह कहाँ जा रहा था। व्यक्ति ने जवाब दिया कि उसे पता नहीं। फिर उसने बताया कि वह कार्य की तलाश में जा रहा था। अमल माधव से पूछता है कि क्या उसे भी कार्य ढूंढना पड़ता है। माधव हाँ कहता है। अमल कहता है कि यदि वह ऐसे काम पर जाएगा तो उसे खुशी मिलेगी। माधव पूछता है कि यदि उसे काम नहीं मिला तो वह क्या करेगा। अमल तब कहता है कि ऐसी दशा में वह और अधिक दूर जाएगा। उसने उस व्यक्ति को पुराने फटे जूते पहने जाते देखा था और जब वह उस स्थान पर पहुंचा जहां अंजीर के पेड़ के नीचे पानी बहता है, वह वहां रुका और जलधारा में अपने पैर धोए। फिर उस व्यक्ति ने अपनी पोटली से कुछ सत्तू निकाला, उसे पानी में घोला और खाने लगा। फिर वह पुनः अपनी यात्रा पर बढ़ गया। अमल बताता है कि उसने अपनी आंटी से नदी तक जाने तथा उस व्यक्ति की तरह सत्तू खाने को कहा है, लेकिन उसकी आंटी कहती है कि वह वहां स्वस्थ होने के बाद ही जाएगा। वह स्वयं उसे वहां ले जाएगी। अमल कहता है कि स्वस्थ होने पर वह वहां जाएगा तथा जलधारा में अपने पैर धोएगा, जबकि दूसरे लोग अपने घरों में सो रहे होंगे। उस समय वह घूमेगा और कुछ कार्य ढूंढेगा। माधव अमल से पूछता है कि वह भविष्य में क्या बनेगा। अमल जवाब देता है कि इस समय वह इस बारे में कुछ नहीं बता सकता। तब माधव उसे अजनबी व्यक्तियों से सावधान करता है। वह उसे घर के अंदर रहने की और नहीं जाने की सलाह देता है। अमल अपने अंकल से कहता है कि वह उसे सड़क के किनारे वाले कमरे में ही रहने दे। माधव उसे वहां छोड़कर चला जाता है। तब अमल एक दही बेचने वाले को देखता है जो उसके कमरे के पास से गुजर रहा है। वह चिल्ला रहा है, दही दही अच्छी दही। बच्चा दही वाले को बुलाता है जो उससे पूछता है कि क्या उसे दही खरीदना है। बच्चा कहता है कि उसके पास पैसे नहीं है। अमल दही वाले को बताता है कि वह घर पर रहते हुए थक गया है और यदि संभव हो तो वह उसके साथ बाहर निकलना चाहता है। वह दही वाले को यह भी बताता है कि उसकी बीमारी के कारण डॉक्टर ने उसे अंदर ही रहने को सलाह दी है। अब वह दही वाले से पूछता है कि वह कहाँ से आया है। दही वाला जवाब देता है कि वह पंचमुरा की पहाड़ियों के नीचे बहती हुई शामली नदी के किनारे बसे एक गांव से आया है। अमल बताता है कि उसने शायद यह गांव देखा है जो लाल सड़क के किनारे बड़े पुराने पेड़ों के नीचे स्थित है। यह गांव आश्चर्यजनक है। पहाड़ियों के दलान पर पशु चर रहे हैं और लाल रंग की साड़ियां पहने स्त्रियां अपने सरों पर घड़े ले जा रही है। लेकिन अमल बताता है कि वह इस गांव में कभी नहीं गया। वह दही वाले से अनुरोध करता है कि उसकी बीमारी ठीक होने के बाद वह उसे गांव ले चले। बच्चा यह भी इच्छा जाहिर करता है कि वह उसकी तरह कंधे पर दही लटकाकर गांव-गांव जाकर दही बेचे। वह दही वाले से यह भी कहता है कि वह एक विद्वान व्यक्ति नहीं बनना चाहता। वह दही वाले को दही बेचने की धुन पसंद करता है। वह दही वाले से यह धुन सीखने को कहता है। दही वाला उसे थोड़ा सा दही लेने को कहता है क्योंकि वह उससे प्रसन्न है। उसने उसके साथ समय बर्बाद नहीं किया है, बल्कि उसने आनंद उठाया है। जब अमल दही वाले की धुन दही दही अच्छी दही सुन रहा है तो उसी समय एक पहरेदार उसके कमरे के पास से गुजरता है। वह लड़के से पूछता है कि वह क्या कर रहा है। वो पूछता है कि क्या उसे पहरेदार से डर लगता है, लेकिन अमल उससे डरता नहीं। दूसरी ओर वह प्रसन्न होकर यदि दूसरी ओर वह प्रसन्न होगा यदि पहरेदार उसे सीधा राजा के पास ले जाए, लेकिन वह नहीं जा पाएगा क्योंकि डॉक्टर ने उसे घर के अंदर रहने को कहा है और उसे धूप तथा नमी के संपर्क में नहीं आना चाहिए। पहरेदार देखता है कि लड़के का चेहरा पीला पड़ गया है और उसकी आंखों के चारों ओर काले घेरे दिख रहे हैं। तब लड़का उसे घंटा बजाने को कहता है। पहरेदार जवाब देता है कि वह उचित समय पर ही ऐसा करेगा। खाना खाने के बाद जब वह घंटे की आवाज सुनता है तो अमल खुश होता है और उस समय उसके अंकल काम पर चले जाते हैं और उसकी आंटी रामायण पढ़कर सो जाती है। घंटे की आवाज बताती है कि समय किसी का इंतजार नहीं करता और हमेशा चलता रहता है। अमल समय के साथ उस देश को उड़ जाना चाहता है जिसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता। पहरेदार अमल को बताता है कि एक दिन उस देश को सभी को जाना है। अमल बताता है कि डॉक्टर उसे इस अनजान देश में नहीं जाने देगा, लेकिन पहरेदार जवाब देता है कि डॉक्टर स्वयं उसे वहां ले जा सकता है। इस डॉक्टर से भी बड़ा डॉक्टर आएगा और उसे इस बंधन से मुक्त कर देगा। अमल पूछता है कि ऐसा डॉक्टर कब करेगा, लेकिन पहरेदार कहता है कि बच्चों को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। तब अमल पहरेदार से पूछता है कि उस बड़े मकान में जिस पर ऊंचा झंडा लहरा रहा है तथा जिसमें हमेशा लोग आ जा रहे हैं, क्या हो रहा है। पहरेदार बताता है कि वह राजा का डाक खाना है। अमल पूछता है कि क्या इस डाक खाने में राजा के पत्र आते हैं। पहरेदार जवाब देता है कि इस डाक खाने में एक दिन उसके लिए भी एक पत्र आ सकता है। लड़के को आश्चर्य होता है और वह कहता है कि वह तो अभी छोटा है। पहरेदार बताता है कि राजा छोटे बच्चों को छोटे पत्र भेजता है। अमल पूछता है कि उसके पास राजा का पत्र कौन लाएगा। पहरेदार जवाब देता है कि राजा के पास बहुत से डाकिये हैं जो अपने सीने पर चमकदार बिल्ले लगाए इधर उधर दौड़ते रहते हैं। ये डाकिये एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे पत्र बांटने जाते हैं और यह उनका बड़ा कार्य है। अमल पहरेदार से कहता है कि राजा के डाकिये की तरह उसका कार्य भी बड़ा होगा। बड़ा होकर अमल राजा के डाकिये की तरह काम करना चाहता है। तभी अमल गांव के मुखिया को पहरेदार की ओर आते हुए देखता है। मुखिया के हाथ में एक बड़ा छाता है। गांव के लोग उससे डरते हैं। उसका व्यवहार गांव वालों के प्रति अच्छा नहीं है। मुखिया को देखकर पहरेदार यह कहकर चला जाता है कि वह कल आएगा। अमल यह सोचकर खुश है कि वह एक दिन राजा का डाकिया बनेगा, लेकिन उसे पत्र पढ़ना नहीं आता, इसलिए वह अपने पत्रों को अपनी आंटी से पढ़वाएगा क्योंकि वह रामायण पढ़ती है। यदि पत्रों को पढ़ने वाला कोई नहीं होगा तो वह उन्हें अपने पास रखेगा और बड़ा होने पर पढ़ेगा। अमल मुखिया से बात करता है। वह उससे पूछता है कि क्या राजा का डाकिया उसकी बात सुनता है। मुखिया हाँ में उत्तर देता है। अमल मुखिया से कहता है कि वह डाकिये को बता दे कि यदि उसका कोई पत्र आए तो वह अमल खिड़की के पास बैठता है। मुखिया यह सुनकर हंसता है कि राजा अमल को पत्र लिखेगा। इस बात पर मुखिया अमल का मजाक उड़ाता है। अमल मुखिया से पूछता है कि क्या वह पागल है जो उससे इस प्रकार बात कर रहा है। मुखिया कहता है कि वह जैसे चाहेगा वैसे बात करेगा। मुखिया अमल से कहता है कि वह माधव को इस बात के लिए डांटेगा और राजा से माधव की शिकायत करेगा। अमल को मुखिया के रूखे व्यवहार से निराशा होती है। मुखिया अमल से कहता है कि वह राजा को इस बारे में बताएगा। मुखिया के जाने के बाद अमल सुधा को अपनी ओर आते देखता है। सुधा एक फूल बेचने वाली की बेटी है। वह कहती है कि उसके पास अमल के लिए समय नहीं है क्योंकि उसे अपने दैनिक कार्य फूल इकट्ठे करने में पहले ही देर हो चुकी है। सुधा अमल से पूछती है कि उसे क्या हो गया है। अमल उसे बताता है कि डॉक्टर उसे बाहर नहीं जाने देता। सुधा उससे कहती है कि उसे डॉक्टर की सलाह माननी चाहिए और शैतानी नहीं करनी चाहिए। वह उसको खिड़की बंद करने की सलाह देती है क्योंकि बाकी खिड़कियां बंद है। अमल उससे पूछता है कि वह कौन है और वह बताती है कि उसका नाम सुधा है और वह फूल बेचने वाले सासी की बेटी है। अमल कहता है कि उसके पैर बड़े सुंदर है और जब वह चलती है तो उसकी पाजेब की ध्वनि बड़ी अच्छी लगती है। अमल उसके साथ फूल इकट्ठे करने की इच्छा प्रकट करता है। यदि उसे घने जंगल में जाने दिया जाए जहां कोई भी आसानी से नहीं पहुंच सकता और शहर की चिड़िया पेड़ों के ऊंची शाखाओं पर बैठती है तो वह चंपा के फूल की तरह खिल उठेगा। वह सुधा से यह भी पूछता है कि क्या वह उसकी बहन पारुल बनेगी, जहां सुधा यह कहकर मना करती है कि वह सुधा है और वह एक दिन में बहुत सी मालाएं बनाती है। वह यह भी कहती है कि वह भी अमल की तरह थोड़ा आराम करना चाहती है। जब उसे थोड़ा समय मिलेगा तो वह अपनी गुड़िया बेनी और अपनी बिल्ली मेनी के साथ खेलेगी। वह अमल से उसे न रोकने के लिए कहती है क्योंकि वह एक भी फूल नहीं चुन पाएगी। वह अमल से वादा करती है कि वह फूल लेकर घर जाते समय उससे मिलेगी। अमल उससे एक फूल देने का अनुरोध करता है लेकिन वह यह कहकर मना कर देती है कि उसे इसके लिए पैसे देने होंगे। लेकिन अमल कहता है कि जब वह बड़ा हो जाएगा तो निश्चित रूप से पैसे देगा। जाने से पहले सुधा उससे वादा करती है कि वह हमेशा उसका नाम याद रखेगी। अब लड़कों की एक टोली आती है जो बताती है कि वो खेत जोतने का खेल खेलने जा रहे हैं। उन्होंने एक डंडे का हल बनाया है और दो लड़के बैलों की जोड़ी बनते हैं। उन्होंने सारा दिन खेलने का निश्चय किया है। शाम को वे नदी के किनारे वाली सड़क पर से लौटेंगे। एक लड़का अमल से साथ आकर खेलने को कहता है, लेकिन अमल बताता है कि डॉक्टर ने उसे घर से बाहर आने को मना किया है। वह उनसे अपनी खिड़की के पास खेलने को कहता है, जिससे कि वह उनको खेलते हुए देख सके। वह लड़कों से अपने खिलौनों से भी खेलने को कहता है, जो उसके लिए बेकार है और बेकार पड़े हैं। लड़के उसके खिलौनों का आनंद उठाते हैं, जिसमें एक पानी का जहाज, एक बूढ़ी माँ और एक सिपाही है। अमल लड़कों से हमेशा के लिए खिलौने रखने को कहता है। वह उनसे उसकी खिड़की के पास प्रतिदिन आकर खेलने को कहता है। जब अमल को नींद आने लगती है तो लड़के चले जाते हैं। जाने से पहले वे अपने नाम बताते हैं। अमल उनसे अगले दिन राजा के डाकिये को लेकर आने को कहता है। अंक एक समाप्त।